हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग जो हैं पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 7। हमारे पीछे बोलिए, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंदगोकुले अन्याच कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभी सरंगलतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश्च कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभी सलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभी सलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभीर्लंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोपी। धन्यवाद। शब्दार्थ गच्छ, अब जाओ देवी, हे समस्त जगत की पूज्या, व्रजम व्रज भूमि में, भद्रे हे समस्त जीवों का कल्याण करने वाली, गोप गोभी ग्वालों तथा गायों के साथ, अलंकतम अलंकृत सज्जित रोहिणी वसुदेवस्य कृष्ण के पिता वासुदेव की भार्या पत्नियों में से एक आस्ते रह रही है नंद गोकुले। गोकुल नाम के विख्यात महाराज नंद के राज्य में, जहां लाखों गायें पाली जाती हैं, अन्याचा तथा अन्य पत्नियां कंस संविग्ना कंस के भय से विवरेषु एकांत स्थानों में वसंती रह रही है ही निसंदेह। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज में जाओ, जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं उन सुंदर प्रदेश में, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौवें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञात वास कर रही हैं। कृपया करके वहां जाओ। तात्पर्य, राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया, क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसे नंद गोकुल के यहां जाने का आदेश दिया गया। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस भागवतम क्लास में, और प्रसंग चल रहा है, स्कंध है 10, अध्याय इसका 2, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, और सबसे फेवरेट टॉपिक है पूरे भक्त समाज के लिए। और परीक्षित महाराज भी, जिनके पास 7 दिन थे, बड़े सारे प्रश्न किए उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर आके वो भी रुक गए, कहते जी भगवान कृष्ण की लीलाएं तो थोड़े आराम से बताना, थोड़ा व्याख्या के साथ बताना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाएं स्वतः ही भगवान से सब आकर्षित हो जाते हैं, और उनकी लीलाओं से भी। इसलिए बताते हैं कई बार कि लक्ष्मी जी भी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं से आकर्षित होती हैं और व्रज में जाकर रास करना चाहती हैं। और यही एक कारण था चैतन्य महाप्रभु का वेंकट भट्ट को कन्विंस करने के लिए, बड़ा सुंदर उन्होंने तर्क दिया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं जो हैं भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर उत्तम जो हैं रसों का आस्वादन कराती है। और यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है और आज जो आज्ञा मिल रही है योग माया को, बड़ी विशेष आज्ञा है, हमने ऐसा संसार में देखा नहीं होगा। इस संसार में तो बिल्कुल नहीं मिलता देखने को कि कोई बच्चा अपनी प्लानिंग करे आने की और लोगों को ऑर्डर करे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गर्भस्थ होने से पहले लोगों को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए, फिर मैं आऊँगा। कितनी अजीब बात लगती है। और इस तरह की कथाएं इसलिए बताया जाता है कि ये प्रसंग जो हैं भगवान की सुंदर लीलाओं से संबंधित लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि इसको समझने के लिए भी योग्यता चाहिए। जैसे बाल्यकाल अवस्था में हर चीज़ बच्चे को समझने के लिए बड़े क्वेश्चन करता है बच्चा, ये कैसे, ऐसा कैसे, वो क्यों। जब एरोप्लेन उड़ता हुआ देखता है तो कहता है इतना छोटा सा है, और जब पास में आके देखते कहते इतना बड़ा सा है। तो छोटी सी उम्र में हम लोगों को भी समझने में चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें समझ आती हैं और बहुत सी चीज़ें जो अभी समझ नहीं आती, उसके बाद और पढ़ाई करते हैं, और डिग्रीज लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें समझ आती हैं लॉजिक के साथ, है ना, फिर कुछ चीज़ें समझ आती हैं, फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, फिर और बढ़ते हैं, और फिर जब बात आती है, जब कितने पढ़ लें उसके बाद जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, व्यक्ति को दुखी रहता है, परेशान रहता है, और अपने सारी पढ़ाई, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे रिलेशन झोंक डालता है, फिर भी अगर उसको सुख नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद जब वो शरण ग्रहण करता है भगवान की, मंदिरों में जाता है, तो वहां पर भी कई चीज़ें समझ नहीं आती उसको, वहां पर भी आके कन्फ्यूज ही रहता है कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मान लूं इनको भगवान। और उसके बाद जब देखता है कि इधर तो जवाब नहीं मिल रहा इस संसार में, तो शायद इधर कुछ मिल जाए, फिर यहां पर बात आती है, क्योंकि इधर उसने सारी चीजें रियलाइज करी हैं देख कर, ठोक बजा कर, एक्सपेरिमेंट कर कर, अब लेकिन इधर का जो संसार है ये अब उसके ऊपर है, बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ सेंस परसेप्शन। यहां पर बात की जाती है उस चीज को विश्वास करने की जो आपने देखी नहीं, ऐसी चीजों पर विश्वास करने की जो आपने सुनी नहीं, और ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं जो कई बार सर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसलिए भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग नास्तिक रह जाते हैं। और आजकल तो ये भी देखा जाता है कि हमारे ग्रंथों को, जो कि सो कॉल्ड हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने नहीं पढ़ा अभी ग्रंथों को, और जब से ये सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन या एजुकेशन का इतना भार बच्चों पर आ गया, तो बाहर विदेशों में जाओ प्रचार करने तो भी उसी तरह के लोग मिलते हैं, और भारत में प्रचार करो तो भी वैसे ही मिलते हैं लोग। लोग हमें बताते हैं कि पहले तो प्रभुपाद जी को इतना मशक्कत करनी पड़ी, जब वहां गए तो उनको कुछ भी भगवान के विषय में ज्ञान नहीं था, तो लॉजिक से ग्रंथों के श्लोक कोट कर करके उनको समझाया, तब समझ आई उनको। तो पाश्चात्य देश तारिणे, इसलिए बोला जाता है कि प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों का क्या कर दिया, उनको तार दिया, उनकी बुद्धि के अंदर कृष्ण भावना डाल दिया। तो हमारे एक भक्त बता रहे थे, भक्त मतलब मोहन रूपा जी बता रहे थे एक बार ही, कि हमारे भक्तों को पाश्चात्य जगत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भी अपने अपने पाश्चात्य देश बन चुका है। जिस ब्रीड के, जिस तरह के इग्नोरेंट लोग वहां मिलते हैं, अब यहां पर भी मिलते हैं। वहां के बच्चों को भी कुछ जानकारी नहीं है हिंदू धर्म की या इन शास्त्रों की, और आजकल के बच्चों को भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, ऐसे थोड़ी करता है, क्यों जाते हैं मंदिर, ये थोड़ी करना चाहिए। और ऊपर से एक दो मूवीज आ जाएं पीके और ओ माय गॉड जैसी, तो अब तो उनका परंपरा ही अलग हो जाती है, एवं परंपरा नास्तिकों की परंपरा से अलग एकदम चलती है उनकी। फिर तो कितना मुश्किल हो जाता है भारत में भी ये समझाना। तो हिंदू धर्म में जो लोग हैं उसमें भारी मात्रा में लोग कन्फ्यूज हैं, और उसके बावजूद कुछ लोग जो धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, ग्रंथों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके दिमाग में इतने प्रश्न रहते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ था, और न ऐसा क्यों कर लिया, फिर ऐसा क्यों हुआ, तो यही प्रश्नों के उत्तर देने। लेकिन अब आप सोचिए, वो लोग जिन्होंने ऐसा सुना नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं, और अचानक कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि बच्चा पैदा होने से पहले अपनी शक्ति को कह रहा है कि जाओ तुम मेरे से पहले आने वाले शेष को, क्या नाम उनका, बलराम जी को एक गर्भ से निकालकर, देवकी के गर्भ से निकालकर कहां कर दो स्थानांतरित, रोहिणी सेक्टर 25 जाकर, क्योंकि वहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे अनर्थ हैं, तो पहले उनको खत्म करना चाहिए। क्यों कहा, कह रहे हैं भद्रे गच्छ देवी व्रजम भद्रे, भद्र तुम सबका शुभ करने वाली हो, तुम पूज्या हो, तुम्हारे वहां जाते सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाएगा, सब कुछ आनंद मंगल हो जाएगा, तो आप क्या करो, बलराम जी को, बलदेव जी को वहां स्थानांतरित कर दो। अब ये चीजें समझने लायक है, इस बुद्धि से समझ सकते हैं नहीं, कि जिसने पहले आना वो अपने से पहले आने वाले को ट्रांसफर करवा रहा पहले उधर, है कि नहीं, बिना वीजा बिना पासपोर्ट बिना किसी के इन्फॉर्मेशन। योग माया की क्यों हेल्प ली जा रही, ताकि किसी को समझना है, ये काम ऊपर ऊपर से ना होना चाहिए, अंदर ही अंदर करना है। इसलिए योग माया को भगवान ने कहा कि तुम जाओ, और ऑर्डर दे रहे हैं कि करो ऐसा। और इस श्लोक में और बता रहे हैं कि क्योंकि उस समय क्या था, ऐसी स्थिति थी कि सारे की सारे ब्रज में और अन्य स्थानों पर कंस का बड़ा ही क्या था, भय था। इसलिए जो वसुदेव थे उनकी पत्नियां भी जो हैं गोकुल में रह रही थी, इतना भय था कंस का। और जब से उसको यह पता चला था कि एक बच्चे के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, वो भी देवकी के आठवें पुत्र के द्वारा, तब तो और भी संकट आ चुका था उसको। और कई ग्रंथों में जब सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो पता चलता है वास्तव में ये कंस जो था ना, जैसे एक पूरी कथा है हम लोगों ने सुनी होगी पहले भी, मरीचि के 6 पुत्र डिस्कस किया होगा कई लोगों ने, उसके बाद काल नेमी नाम का असुर, उसको बोला गया था कि तुम अपने पुत्रों का खुद वध करोगे, वही जो 6 पुत्र हैं अब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, और जिसको काल नेमी अर्थात जो बाद में कंस बना, अब उसने एक एक करके मारा। और इससे पहले क्या लीला घटित होती है, अब क्यों समझा जा रहा है इस चीज को इस प्रकार, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सुंदर आध्यात्मिक वैकुंठा प्लेयर, जैसे हमारे ड्रामा टीम का नाम है यहां पर, ऐसे गोलो का टीम भी है गोलोक धाम में। जब पृथ्वी यहां से जाती है आंखों में आंसू लिए गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उनको लेकर जाते हैं भगवान विष्णु के पास, तो एक जगह गर्ग संहिता में लिखा है कि ये लोग जो हैं, श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ दास, ये लोग जो हैं, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर, वो वामन रूप लेकर बलि महाराज का सारा राज्य, जो उन्होंने बोला था कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो पहले में ही जब नापा तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और ऊपर से ब्रजा नदी जो है, कर्ण नदी जो है बहने लगी। लेकिन उसी क्षेत्र से कहते हैं कि ये सारे देवता लोग ऊपर गए दर्शन करने के लिए। शिव जी भी साथ में थे, विष्णु जी भी साथ में थे, ब्रह्मा जी भी साथ में थे और देवता लोग भी साथ में थे और दर्शन करने गए और वहां जाके इतना सुंदर गोलोक धाम का दर्शन किया पहली बार और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो उन्होंने बोला, सर इनके लिए आए हम तो, वहां पर जय और विजय नहीं थे, वहां पर गोपियां ही रहती हैं द्वारपाल के रूप में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये पृथ्वी का भार उतारना है, बहुत परेशान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग जाकर देवताओं को बोलो कि जाकर क्या करें, अवतार ले लें वृंदावन में जाकर, और यहां से भी हम लोग चल पड़े। यहां से श्रीमती राधा रानी ने कहा भाई मैं कैसे, जहां पर तो गोवर्धन, वहां गोवर्धन नहीं मिलेगा, वहां यमुना नदी नहीं होगी, वहां पर ब्रज नहीं होगा। तो भगवान ने कहा इनको भी ले चलते हैं। तो पूरे ब्रज के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरे सेट के साथ, सारे स्पॉट बॉय, लाइटमैन, कैमरामैन सबके साथ भगवान कहां पहुंच गए, इस धाम में अवतरित होने वाले हैं। और उससे पहले ये सारा सीन बना रहे हैं भगवान, देखिए। और सब लोग डर भी रहे हैं, ये सारे हैं देवताओं के अंशी लेकिन डर भी रहे हैं। सीन ऐसा है, रूल ऐसा है कि डरना है। और कंस जो पहले कालनिमी था, अब ये कंस जो है, इस कंस ने इतना हाहाकार मचाया था, इतना शक्तिशाली था ये कंस। हम जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आगे जब हम सुनते हैं और पढ़े होगी कहानी हमने, कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया और अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का बलराम जी ने वध किया, अन्य जितने भी असुर थे, ये असुर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने मारे। तो हमको तो लगता है वाओ भगवान श्री कृष्ण, उससे पहले कंस ऑलरेडी मार पीट चुका था इनको। कंस ने पूरा दिग्विजय, पूरे के पूरे संसार में भ्रमण किया और जहां जहां पर ये खतरनाक असुर थे, इन असुरों को पकड़ा और इनको पहले पटका खूब, और उसके बाद इन्होंने अपने साथ में ले लिया सबको। तो इनकी बहुत बड़ी टीम बन गई खतरनाक असुरों के साथ, और फिर जाकर देवताओं पर चढ़ाई करी इन्होंने। तो पूरे के पूरी पृथ्वी पर, नीचे ऊपर, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। तो अब कंस की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, और ऐसा कंस अगर किसी को भयभीत करे तो क्या नहीं हो जाएगा। ब्रज के लोग बेचारे क्या उस समय, तो सारे देवता के अंश, ये सब जितने भी लोग तो भयभीत थे। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं योग माया को कि तुम जाओ और बलराम को स्थानांतरित कर दो। आज भी मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टर्स लोग कई चीजें हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं, तो ये चीजें तो हमें समझ आती हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा केस थोड़ा सा अलग है। यहां हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी देखते हैं और बताते हैं 30 मिनट के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। तो एक जगह से दूसरी जगह तक किडनी लेकर जाते हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा न्यूज में, और इतने टाइम के अंदर जाकर उसको ऑपरेट करके ठीक करना होता, फिर व्यक्ति जीवित हो जाता है। उसी तरह अब यहां तो एम्ब्रो की बात हो रही है, यहां तो बलराम को यहां से ले जाना और बिना किसी को पता लगे, ऐसा तो नहीं होता कि माता को पता नहीं है, किसी के शरीर से कुछ निकाल रहे हैं, डॉक्टर पहले बताते हैं भैया ऐसा करने जा रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो शांत रहना, चिल्लाना नहीं, बीच में उठना नहीं, तो वो निकालते हैं चीजों को, फिर दूसरे के शरीर में डालते हैं। लेकिन यहां पर योग माया की शक्ति के द्वारा क्या हुआ, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, तो उसको भी नहीं पता जिसके यहां से निकाल रहे हैं और उसको भी नहीं पता जहां डाल रहे हैं। और इस प्रकार इतनी दूरी पर जाकर योग माया ने वहां पर बलराम जी को स्थानांतरित किया। अब देखने वाली बात यह है कि जिन बातों को हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा कि भैया ऐसा ऐसा करो, और उसके बाद भगवान स्वयं अवतरित होंगे अब और योग माया की शक्ति से, तो देखते हैं कि आजकल भारी संख्या में इन्हीं ग्रंथों को, मैंने बताया कि पहले हिंदू ही लोग बड़े जो है भ्रमित रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब तो इन ग्रंथों को दूसरे धर्म के लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया धर्म परिवर्तन करने के लिए। मतलब अगर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना है तो उन्होंने हमारे ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए और यही सब स्टोरीज सुनाना शुरू कर दिया लोगों को, जो पहले ही कंफ्यूज थे या जिन्होंने सुने ही नहीं या पढ़े ही नहीं, उनको बताने के लिए कि देखो ऐसा कोई होता है क्या, मतलब ऐसा भी होता है कि यहां से यहां निकाल के वहां चला जाए, कुछ आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा भी कभी होता है कि कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक ऐसी मेड बुलाई जो कि दिखती नहीं है, वो यहां से यहां तक ट्रांसफर कर रही है, नहीं। तो इन्हीं कथाओं को, इन्हीं स्टोरीज को वो लोग भी पढ़ रहे हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। कारण क्या है कि अभी विश्वास की योग्यता ही नहीं है हमारे अंदर, जिनके अंदर थोड़ी बहुत विश्वास करने की, इन कथाओं में भगवान की लीलाओं में विश्वास करने की योग्यता है, ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं भागवतम क्लास में। और इतने समय बाद श्रवण करने के बाद, बार बार श्रवण करने के बाद, जिज्ञासाएं पूछने के बाद, तब कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है। और उसके अलावा भी इस फिलॉसफी को तो या इन कथाओं को तो वैसे भी व्यक्ति नहीं समझ सकता जब तक कि उसका कोई योग्यता ना हो। और योग्यता बनाई जाती है, योग्यता तैयार होती है या तो पूर्व जन्म की सुकृतियों के द्वारा या साधु संघ के द्वारा या हरि नाम के द्वारा, कि व्यक्ति ने अपने आप को तैयार किया है भगवान के पवित्र नाम जप कर करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये योग्यता बनाता है। तब जाके यहाँ के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और तब जाके हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा को या कथाओं को समझ सकते हैं। ऐसी योग्यता होने के बाद कुछ समझ आता है। और अब सोचिए, कोई चलता फिरता व्यक्ति जिसने कभी सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति इन कथाओं को जब सुनता है या इन भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करता है तो केवल व्यंगात्मक ढंग से बात करता है और दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन करता है। देखो क्या कर रहे हैं, हिंदू लोग ऐसा करते हैं, यहां पर जल चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, शिव जी ने अपने पुत्र का गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं समझ आता उनको। बताओ किसी के 8 हाथ होते हैं क्या? तो इस तरह की चीजों को अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने बोलेगा जिसका फेथ नहीं है, जिसका कोई समझ नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। लेकिन इन कथाओं को और समझने के लिए इसलिए बताया गया योग्यता। परीक्षित महाराज ने भी डायरेक्टली जंप नहीं किया जब उनको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला सुननी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से सुनाओ, 7 दिन वही कथा होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रश्न करे, सृष्टि से संबंधित प्रश्न, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस करे, कथाओं से संबंधित डाउट्स पूछे और धीरे धीरे सारी चीजें पूछते हुए अब जाकर कथा शुरू हुई। भगवद गीता भी इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवद गीता तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले कह सकते हैं कि ABC के समान है। भगवद गीता को ABC बताया, देखिए। अब भगवद गीता जैसा ग्रंथ अगर ABC है तो अब सोचिए श्रीमद भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों की क्या महिमा होगी। और अगर भगवद गीता को ABC बताया तो आप सोच सकते हैं विश्व में जो और धर्म है और उनके और ग्रंथ हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मतलब उन ग्रंथों को पढ़कर जिसमें केवल ज्यादा से ज्यादा रोजमर्रा की चीजें हैं, डूज और डोंट्स बताए हैं और निराकार से संबंधित चीजें ज्यादा भरी हुई हैं। अब आप सोचिए जहां उन सब का ग्रंथ खत्म होता है, उनकी शिक्षा खत्म होती है, उनका ज्ञान खत्म होता है या उनकी या जितना भी पहुंच जाते हैं उन रियलाइजेशन के मामले में, यहां वहां से गीता शुरू होती है, वहां से गीता का ज्ञान शुरू होता है। और कहां तक जाता है, 5 तत्व बताए हैं, ईश्वर तत्व है, जीव तत्व है। अब पूरा संसार इन्हीं 2 चीजों में कंफ्यूज भी बहुत खतरनाक ढंग से है। चाहे हम पूरा कुरान ग्रंथ पढ़ लें या अन्य ग्रंथों को पढ़ लें, बाइबल इत्यादि, व्यक्ति का रियलाइजेशन इस पे बनता ही नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना पढ़ने के बाद भी। और उसके बावजूद लोग जो हैं जिनका इतना रियलाइजेशन, और ईश्वर तत्व को लेकर तो और बड़ी कंफ्यूजन है। बाहर जो है हमने कई चीजें देखी सुनी है, जैसे 4 वेदों को बोलते हैं कि 4 वेद जो हैं, अब तो देखिए कैसे, जैसे एक समय था जब 5000 साल के बाद धर्म के बड़ी क्षति हुई, अन्य राजा इत्यादि आए और ब्राह्मण ने जब वेदों की सहायता से यज्ञ इत्यादि में बलि इत्यादि देना शुरू कर दी, हाहाकार मच गया, तो भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं और उस समय अहिंसा परम धर्म का ज्ञान देकर जाते हैं। तो कहीं पर देखा जा सकता है, कोई बोल सकता है, देखिए स्वयं भगवान अवतार ले रहे हैं और वेदों को मना कर रहे हैं पढ़ने से, सबको शून्यवाद बता रहे हैं और अहिंसा को परम धर्म बता रहे हैं, ये कैसा ज्ञान है। लेकिन उस समय के लिए वो जरूरी था। क्या जरूरी था? क्योंकि सारे उस समय के ब्राह्मण जो थे गौ हत्या कर रहे थे या यज्ञों में आहुतियां दे रहे थे, बलियां दे रहे थे, तो उस समय जरूरी था कि अहिंसा ही इनको परम धर्म बताया जाए, जबकि ये एक भक्त का नाम से गुण है, छोटा सा गुण है कि वो अहिंसक रहता है। वेदों को पढ़कर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों को मत मानो तुम, ऐसा बताया गया। उसके बाद शंकराचार्य जी, स्वयं भगवान शिव, पार्वती को पद्म पुराण में बताते हैं कि मैं स्वयं ब्राह्मण के रूप में आता हूं और मायावाद का प्रचार करता हूं। किस प्रकार करता हूं कि लोगों को भगवान से विमुख कर और एकत्व की बात करता हूं। सोहम, जो वो हैं वो हम ही हैं, हम और उनमें कोई अंतर नहीं। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो हम लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे आचार्यगण आए उन सब ने बताया कि नहीं, जीव तत्व अलग है और भगवत तत्व अलग है। पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे वीडियोस भी थे उसमें, तो मैं देख पा रहा था कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसे हम बात करते हैं इस्लाम की। अगर आप किसी इस्लामिक व्यक्ति से, स्टूडेंट से बात करेंगे, किसी मौलवी से बात करेंगे, किसी मुस्लिम से बात करेंगे, आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने धर्म के प्रति कट्टर है। और कई चीजें जो धर्म की पालन करते हैं उनके अंदर बहुत सुंदर अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ईश्वर केवल एक है और वो कौन है? अल्लाह। और वो अल्लाह के अलावा ना तो किसी के आगे सर झुकाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को भगवान नहीं बताते, और इस प्रकार पूरी की पूरी उनकी भक्ति और उनकी सारी चीजें अल्लाह के शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। और हम देखते हैं कि जिनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है पूरे विश्व भर में, वो इस शब्द के अलावा कहीं इधर उधर हिड़ते फिरते नहीं। और इसके अलावा अगर कोई और भक्ति कर रहा है, ये किसी और को मान रहा है, तो उसको क्या समझते हैं? वो काफिर समझते हैं, और उनको मार भी दें, उनको कन्वर्ट भी कर दें, तो वो उसमें ये एक अल्लाह का ही काम समझते हैं कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूं। और आप देखेंगे मानसिकता गलत नहीं है। मान लीजिए अगर उनके पास इतनी शिक्षा है कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, और जो भगवान की या कुरान की आयतों के हिसाब से नहीं चल रहा वो जानवर के समान है, और हमें प्रयास करना चाहिए उन्हें अल्लाह के शरण में लाना चाहिए। तो आप देखोगे हमारा मूवमेंट और उनका मूवमेंट भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, कुछ गलत नहीं कर रहे वो लोग। अगर आज हम भक्तों को बोला जाए आप ये चार नियमों का पालन कीजिए, ऐसा कीजिए, तो भक्त करता है, बड़ा रिजिड पूरा स्ट्रांगनेस के साथ करता है। अगर उसको बोला जाए कि हाँ जन्म सार्थक करी पर कर पर उपकार, तो इस्लाम में भी तो यही कर रहे हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार है कि नहीं? वो अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं और दूसरे को इस्लाम में ला रहे हैं बाय हुक एंड बाय क्रुक। जैसे कई बार शब्द आता लव जिहाद, तो उनका देखिए कैसे वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, उनको लगता हम धर्म का पालन कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो उनको लगता कि जितने अधिक धार्मिक लोग होंगे तो क्या दिक्कत है, पूरे विश्व में धर्म फैलना चाहिए, इसलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, और भारी संख्या में क्या करते हैं? इस्लाम को फैलाते हैं। आज लगभग 56-57 देश हैं इस्लाम के, इस्लामिक कंट्रीज हैं। और कैसे चलाते हैं देश को? कई लोग सऊदी गए होंगे, धार्मिक पुलिस है उधर, नमाज का अगर टाइम हो गया ट्रैफिक को पूरा बैन कर देते हैं। अगर रमजान ये रोजे चलेंगे अब, तो रोजों के टाइम पर आप खाने पीने की दुकानें नहीं खोल सकते, ओपनली नहीं खा सकते कुछ। धर्म जैसे कहते थे ना, जब हम पढ़ते हैं राजा परीक्षित के बारे में या भगवान राम के बारे में कैसे, तो उस समय भी धर्म का प्रचार करने के लिए, धार्मिक चीजों को करने के लिए नियम अच्छे थे, स्ट्रांग थे, और लोगों से प्रयास किया जाता था कि उसका पालन करें, राजा का काम ही होता था। तो अगर हम देखेंगे तो बड़ी सारी समानताएं मिलेंगी वैदिक काल की। और इसलिए संतानों को आप देखते हैं उनकी जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है। हमारे यहां तो हम दो हमारे है ना, सरकार का स्लोगन था हम दो हमारे दो, उनके पास स्लोगन था हम दो हमारे चार हमारे सो। तो क्यों? उनको लगता है कि हम लोग सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और सब जो हैं अल्लाह पाल लेंगे सबको। और आप देखिए वो जितनी भी जनसंख्या बढ़ाते हैं वो सब ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, वो सब छोड़ देते हैं कि ठीक है जो मर्जी काम सीखो, अल्लाह का शुक्र करो और काम आगे बढ़ाओ। आज से जब तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था संसार का, लोग कैसे जीते थे? हमारे देश में भी जब भारी संख्या में लोग रहते थे कैसे जीते थे? खेती में, सिंपल लिविंग ऐसे जीते थे। उनको भी था विश्वास था कि हाँ भगवान पाल लेंगे, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो चीजें तो उधर भी हो रही हैं, इसलिए वो जनसंख्या भी बढ़ाते हैं कि भाई आएगा तो कुछ करेगा। या फिर जो लव जहर शब्द मैंने सुना था, पढ़ा था कई जगहों पे, वो क्या करते हैं, अपने युवाओं को बोलते हैं कि आप जिन लोगों को शिक्षा नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, जो काफिर हैं या जो अल्लाह की शरण में नहीं है, उनको लेकर आओ। तो कैसे लाते थे, कैसे लाते हैं, तो जो मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो कहते हैं कि युवा जो है किसी हिंदू युवती को देखकर या क्रिश्चियन युवती को देखकर उसे प्रेम प्रसंग के अंदर जुड़कर उसको फिर इस्लाम में लेकर आते थे कि देखो मैं एक और ले आया, आज से मेरे घर में एक लड़की और आ गई, अब इसको मैंने इस्लाम कबूल करा दिया, अब ये अल्लाह की हमारे इस्लाम में आ गई, एक संख्या बढ़ गई। एक मौलवी का मैंने प्रवचन सुना, वो कहता है कितने लोग हैं हम देश में, 20 करोड़, अगर हर एक मुस्लिम 5 हिंदुओं को, 4 हिंदुओं को और 1 क्रिश्चियन को, टोटल 5 हो गए, एक एक मुस्लिम अगर 5 लोगों को क्रिश्चियन इसमें इस्लाम में लेकर आएगा तो पूरा भारत हो गया इस्लामिक, कृष्ण भावना भावित हो गया, हुआ कि नहीं उनके, मतलब अल्लाह और कृष्ण एक ही है ना, तो वो भी देखिए क्या करना चाह रहे हैं, पूरे के पूरे अल्लाह कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं। तो और हमारे यहां पर भी कहा गया जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शिक्षा दी जा रही है, किस लेवल की शिक्षा दी जा रही है। तो यहां पर 4 वेदों की जब हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि कुरान जो है ऊपर से उतरी है। तो हमने बताया कि केवल एक ईश्वरवाद था वहां, केवल अल्लाह और उसके अलावा कुछ नहीं, और उसके हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी संस्था में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने थोड़ा मटेरियल एजुकेशन लिया, दूसरे धर्म के ग्रंथ भी पढ़े। तो जैसे हमारे यहां तो जीरोइज्म से पहले कुछ नहीं था, तो पहले जीरोइज्म स्थापित किया गया, उसके बाद एक ईश्वरवाद स्थापित किया गया मायावाद शंकराचार्य के द्वारा, उसके बाद हमारे आचार्यों के द्वारा द्वैतवाद स्थापित किया गया। उसी तरह अब उनकी बिरादरी में भी कुछ ऐसे प्रचारक आ गए जिन्होंने उनको यह समझाना शुरू करा, भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो हमने पढ़ा है हिंदुओं के यहां पर 1 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, एकम, 2 को क्या बोलते हैं द्वितीय, तो द्वितीय प्लस द्वितीय चतुर्थ, 4 होता है। हम अमेरिका गए 2 प्लस 2 4 होता है। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश करके जिन्हें मल्ला कह रहे हैं और एक ईश्वर कह रहे हैं, भाई जिन्होंने हमें बनाया तो इसका मतलब इन लोगों को भी तो अल्लाह ने बनाया, ये लोग जिनकी भक्ति कर रहे हैं, हमारी कुरान ऊपर से उतरी, इनके 4 वेद ऊपर से उतरे, उसमें भी यही बात कर रहे हैं कि एक ईश्वर है बस। तो इस प्रकार जब उन्होंने कोट करनी चीजें शुरू करी तो अब उनको भी समझ आने लगा क्या, तो जो पहले एक अल्लाह के अलावा कुछ नहीं देखते थे, अब भारी संख्या में लोग ये समझ गए कि वेद भी गलत नहीं है, जो वेद कह रहा है वही कुरान भी कह रही है, हम अल्लाह को भगवान मानते हैं, वो ईश्वर को भगवान मानते हैं, हमारे अल्लाह का भी कोई आकार नहीं है और वेदों के हिसाब से उनका भी आकार नहीं है, हमारे हिसाब से भी अल्लाह का क्योंकि आकार नहीं, तो उनकी फोटो नहीं है, कोई लैमिनेशन नहीं, कोई प्रतिमा नहीं है, ना तत् प्रतिमा अस्ति उनके शास्त्र भी कहते हैं। तो देखिए कितनी इंटेलिजेंटली एक व्यक्ति ने क्या एस्टैब्लिश कर दिया। अब थोड़े से लोगों के दिमाग खुल गए कि नहीं, अब हमारे अलावा हम ही हम नहीं है, इसके अलावा भी है, इस कुएं के बाहर भी कुछ कुएं जगत है, फ्रॉग इन द वेल नहीं है, है ना, अब बाहर निकल आए कि नहीं वो भी 2 और 2 4 होता है, द्वा द्वा चिश्ती होता है, हर तरह की चीज वो समझ गए बात को, और 4 वेद जो है वो भी ऊपर से उतरे हुए हैं। तो अब ऐसी मानसिकता आ गई उनके अंदर, बड़ी इंटेलिजेंटली चीजें रखी गई। देखिए कोई कह सकता है कि उनके जो इस्लामिक प्रचारक हैं वो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया उन लोगों के लिए जिनकी संकीर्ण मानसिकता थी, जो उससे ज्यादा नहीं देख पाते थे। अब क्या दरवाजा खुल गया कि नहीं, ये जो कर रहे हैं ये भी ठीक है। जिस प्रकार उनकी कुरान में नहीं बताया गया कि अल्लाह का आकार है, लेकिन जब वो 4 वेद पढ़ेंगे जो पढ़ भी रहे हैं तो उसमें देखेंगे उसमें नारायण लिखा है, उसमें वसु ब्रह्मनो देवकी पुत्रम लिखा है कि भैया देवकी के पुत्र ही परब्रह्म है, जिस परब्रह्म को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नारायण लिखा है, नारद लिखा है, इंद्र लिखा है, सब कुछ लिखा है उसके अंदर, तो फिर पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ भी रहे। कितनी मुश्किल, कितना मुश्किल काम था ये। जिस प्रकार हम भगवान बुद्ध की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने स्थापित किया और हिंसा को रोका, जिस तरह हम शंकराचार्य की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने जीरोइज्म से एक दिया, और जिस प्रकार हम आचार्यों की बात करते हैं जिन्होंने एक से दो दिया, उसी प्रकार उन मुस्लिम प्रचार को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को यह समझाने की कोशिश करी कि भैया यही सब कुछ नहीं है, इससे बाहर भी सब कुछ है। तो जब बात की जाती है तो वो पता चलता है कि वो कहते हैं कि भैया ऊपर अगर तुम जाओगे हूरे मिलेंगे, हूरों का रंग जो है इतना सुंदर है, इतनी सुंदर शक्लें उनकी, उनका रंग जो है आनंदम बुद्धिवर्धनम, मतलब तुम उनको यूं देखो सुंदर लगेंगी, यूं देखो फिर वापस देखो तो और सुंदर लग जाएंगी, उनका सुंदरता बढ़ती जाती है। क्यों? पूछो पूछो, प्रश्न पूछो, क्यों? वो कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह के चेहरे से उनको नूर मिलता है। क्या मिलता है? नूर मिलता है। तो अल्लाह का मतलब चेहरा है साकारिज्म आ गया ना, अल्लाह का चेहरा है इसका मतलब, तभी तो मिल रहा है नूर। और स्वर्ग में अल्लाह का जहां पर सिंहासन है वो सोने का बना हुआ है, रत्न जड़ित है। समझदार को इशारा काफी है कि रत्न जड़ित सिंहासन किसको चाहिए होता है? हाँ, शरीर निराकार को थोड़ी बैठना लेटना है, वो तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन सिंहासन चाहिए। तो समझ आ रहा है धीरे धीरे। और जिनको समझ आ जाता है वो क्या करता है? इस्लाम में बात कर रहे हैं, जिनको समझ आता है वो क्या करता है? वो फिर ऐसी गैदरिंग में नहीं जाता जहां पर कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं, रिजिड लोग हैं, हर बात में तलवार निकाल लेते हैं या जो कुछ उल्टा सीधा करते हैं। उनको समझ आ गया भैया ये लोग भी गलत नहीं, उधर भी साकार की बात हो रही है, और चार वेद तो उन पर्सनैलिटीज के नाम ले रहा है, और पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती थी। तो वो जो पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती थी, वो जो हिस्ट्री थी पुराणा में, इन पुराणों में भागवत पुराण इत्यादि में उनका वर्णन मिलता है। और उनका वर्णन क्या मिल रहा है कि किस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं? वो कहते हैं अल्लाह का जन्म नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता, अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, नहीं होती भाई प्रतिमा नहीं होती, सही कह रहे हो। भला भगवान का इतना सुंदर रूप, आध्यात्मिक रूप, भला कैसे इस भौतिक जगत के पांच एलिमेंट कोई चीज ऐसी बना सकती जो भगवान जैसी दिखती हो या बोलती हो या होती हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा कौन सा पांच चीजों से बना हुआ रंग भगवान के रंग को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहां पर लगता है उनको कि ठीक है, लेकिन जब पढ़ते हैं भक्तों के संग में आते हैं तो पता चलता है कि एक तो नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने कहा वो वेदों को मानते हैं, खाली हम वेदों को मानते हैं, नहीं मानते इसके अलावा कुछ, चार वेद में बताओ अगर लिखा है मूर्ति पूजा तो। इन्हीं बातों को कोट करके वो हमारी मूर्ति पूजा छुड़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बताइए कहीं लिखा हो चार वेदों के विषय में, तो चार वेदों में कहीं लिखा हो, बता दिया नहीं मूर्ति उनके कुछ नहीं होते। हाँ, लेकिन जब उन्हीं वेदों में आप उन वेदों को मान रहे हो, वेद यहां पर कैसे पहुंचे? भाई एक वेद के चार वेद किए, चार वेद के इतने सारे उपनिषद ब्राह्मण संहिता सब कुछ बनाएगी, बनाई हां जी बनाई, तो इनको मानते हो? हां जी मानते हैं। अब जिसने बनाई वो सब चीज, उन्होंने पुराण भी लिखे, हिस्ट्रीज भी लिखी, कब कब क्या क्या हुआ, उनको मानते हो? माने ना माने, माने चलो मान लेते हैं। अब जब मान लेते हो तो फिर उन्हीं भगवान के जब अवतार होते हैं, कपिल भगवान का अवतार अध्याय 3 श्लोक संख्या नहीं, स्कंद 3 अध्याय 29 और वर्ष 16 भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति को चाहिए कि रोज मेरे मंदिर में आके मेरे विग्रहों का दर्शन करे, चरणों का स्पर्श करे और इस प्रकार आध्यात्मिकता में उन्नति करे। तो मूर्ति पूजा की बात कर रहे, भगवान स्टैब्लिश कर रहे हैं कि भैया मेरा दर्शन करने के लिए मंदिर में आ, रोज मेरा दर्शन कर मेरे विग्रहों का, तो हर जगह मिलती है। नारद जी ने ध्रुव महाराज को क्या बताया, जो कहते नहीं नहीं मैं जंगल में जाके पड़ूंगा, मुझे बताओ काम, कहते नहीं नहीं बेटा जब बड़े हो जाओगे तब आना, अभी तो बहुत छोटे हो, शेर वेर खा लेंगे तुम्हें। कहते नहीं मुझे चाहिए सबसे ऊंचा पद, मदद करते हो तो बताओ नहीं तो मैं चला। कहते ठीक है, वहां जाओगे तो ये मंत्र बोलना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और भगवान के विग्रह बनाना, दो भुजा रूप, भगवान का सुंदर रूप बनाकर उस पर मेडिटेशन करना। तो विग्रहों की स्थापना, विग्रहों के विषय में, विग्रहों का साइज, विग्रहों के बनाने की सारी चीज स्क्रिप्चर्स में बताइए। और हम लोग कभी देखा है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पहाड़ देखा आपने? देखा कि नहीं? क्यों नहीं देखा? अभी गोवर्धन का पर्वत नहीं देखा? देखा है ना? तो क्योंकि गोवर्धन उठाया था तो इसलिए गोवर्धन है। भगवान के हाथ में बांसुरी देखी आपने? शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जब खड़े होते तो बांसुरी लेके खड़े। तो जो शास्त्रों के हिसाब से घटनाएं घटी हैं या जो विग्रहों के विषय में बताया जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो विग्रहों को स्थापित किया जाता है। अब ये जो विग्रह हैं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, हमारे वेदों के अनुसार तीन रूपों में पूजे जाते हैं, दूसरे ग्रंथों में वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। अन्य धर्मों में केवल निराकार बताया गया भारी मात्रा में, क्योंकि नहीं समझ पाएंगे, साकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से मिल जाएगा। और जो लोग यहां पर ब्राह्मणिकल भेदभाव के कारण संसार छोड़ गए थे, नियमों को पालन नहीं करना चाहते थे, पशुओं की तरह रहना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो देश छोड़ छोड़ के दूर चले गए, ऐसे लोगों को कौन समझाएगा जो पशुवत जी रहे थे? तो भगवान ने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज भेज के कार्य करवाया और उन लोगों के लिए उतना बताया जितना वो कर सके। अगर उनकी शिक्षाएं डायरेक्टली हमसे मिलती होती तो नहीं मानते, इसलिए केवल निराकारवाद का उसमें वर्णन किया, क्योंकि भगवान की फॉर्म को रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे लोग। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन एज हिज ओन इमेज, एज ही लुक्स लाइक, वैसे इमेज बनाया, तो इट मींस ही हैज ए इमेज। और हमारे यहां ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, हमारे ग्रंथों में तो बताया कि ठीक है रूप है भगवान का सुंदर। अर्जुन ने भी प्रश्न कर लिया, भगवान मैं निराकार में करूं या साकार में करूं? तो भगवान ने कहा साकार में करो, जिस तरह से देख रहा हूं। तो ये सब दिए गए शास्त्र में, और आज वही साकार व्यक्ति जन्म लेने को तैयार है। तो कैसे हम इनको निराकार मान सकते हैं? इन ग्रंथों में कैसे इतनी सुंदर लीलाएं चल रही हैं, भगवान सब कुछ कैसे निराकार मान सकते हैं? लेकिन जिनके पास अभी ज्ञान नहीं है, जिन लोगों के पास अभी संग नहीं है, जिन लोगों की अभी स्थिति ऐसी नहीं है, वो नहीं आ सकते साकार भक्ति में अचानक। एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है देश में स्त्रियों का है, वो कहते हैं कि भगवत गीता जो है कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर शिव जी बैठे हैं, उन्होंने बोली है। मैं हैरान, मैं तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। मैंने कहा भाई कृष्ण तीन प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान, मतलब सीक्रेट नॉलेज, टॉप सीक्रेट एंड टॉप मोस्ट सीक्रेट। तीन सीक्रेट बताए भगवान ने, चौथा छूट गया भगवान से। वो यार अर्जुन मैं तो बताने ही भूल गया यार, मेरे अंदर से तो शिवजी बोल रहे हैं। ग्यारह में तो कह रहे हैं कि भैया मैं शिवजी के रूप में मैं ही हूं। इतनी बड़ी संस्था चल रही है, आप सोचिए क्यों चल रही है? क्योंकि जिनके ऊपर वो चल रही है उनने कभी गीता खोली नहीं है। बताइए कि भगवान को कैसा लगता होगा और शिवजी कैसे सोचते होंगे, कहेंगे यार कमाल है। क्या स्थिति होगी उनकी? तो ऐसे ऐसे, तो इसलिए ये जो पर्सनैलिटीज, स्वयं भगवान वो कहते हैं आज, मतलब भगवान का जन्म नहीं हुआ तो नहीं है भगवान, जन्म नहीं लेते जन्म। भगवान को जो जन्म देगा तो फिर भगवान तो वो हो गया ना। यहां पता चल रहा है स्वयं भगवान जो है, जिनको कोई जन्म नहीं दे सकता, वो स्वयं अपने जन्म की लीला रच रहे हैं और इस प्रकार आने के लिए अपनी योग माया शक्ति को कह रहे हैं कि तुम जाओ पहले बलराम जी को उधर सेट करो और फिर मैं अवतरित होऊंगा। बोलो भगवान कृष्णचंद्र की। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप इन ग्रंथों को पढ़ें सुने, ताकि आपका भगवान के साकार रूप में, सुंदर रूप में आकर्षण बढ़े। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया। आप फेथ के विषय में चर्चा कर रहे थे तो मैं थोड़ा उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहता था कि ऐसा देखा जाता है भक्त समाज में भी, जो भक्त हैं लगभग 8-10 सालों से भी भक्ति कर रहे हैं काफी समय से, वह भी अपने बच्चों को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामावित का ज्ञान नहीं देना चाहते, उनको भौतिक एजुकेशन देना चाहते हैं, और ऐसा उनको मन में पूर्ण विश्वास है जब तक वो एक अच्छे भौतिक मटेरियल स्कूल में नहीं जाएंगे और वहां की एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनका जीवन सफल नहीं हो पाएगा, और इस कारण से देखते हैं कि भक्त समाज में बच्चे ही भक्त नहीं बन पाते, और जिस कारण से हम दूसरे लोगों को तो प्रचार कर पाते हैं लेकिन अपनी कम्युनिटी में बच्चों को प्रचार नहीं कर पाते, तो इसके विषय में हमको क्या करना चाहिए?
देखिए, कई कारण है इसके कि बच्चे भक्त नहीं बनते। नंबर एक, कई बार माता पिता ही इतने अच्छे ढंग से कृष्ण भावनामृत को नहीं ले रहे थे इतने सीरियसली कि बच्चों पर प्रभाव पड़े। दूसरा कारण है कि माता पिता भी बहुत लेट आए होते हैं कृष्ण भावनामृत में, इससे पहले बच्चा आधी फिल्म देख चुका होता है माता पिता की, तो उनको लगता है कि भैया इन्होंने तो खा पी लिया, अभी मेरे को बोल रहे हैं कि माला कर बैठ कर, है ना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि माता पिता को भी ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है कि बच्चे पालने कैसे हैं, बचपन से छोटी मोटी बात पर चपेटे मारी होती हैं, है ना, गुस्सा किया होता है, बहुत क्रोध किया होता है, तो वो शिक्षा नहीं है उनके पास कि बच्चों को किस प्रकार कृष्ण भावना में तो उनके अंदर इन्फ्यूज करनी है। चौथा कारण है वातावरण का, अगर माता पिता ठीक भी हैं बच्चे भी सबमिसिव हैं, लेकिन वातावरण ऐसा है कि जो बड़ा उग्र वातावरण है मोड ऑफ पैशन में है, तो बच्चा भी फिर वो मोड ऑफ पैशन की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, और माता पिता घर में जब बच्चों को इंस्पायर करते हैं तो वो इंस्पायर बच्चों को इस तरह से करते हैं, देख उसके बेटे को देख, उसने MBA कर लिया है और 3 लाख का पैकेज है पर मंथ, उसके बेटे को देख उसने LLB कर लिया है और अब वो इतना कमा रहा है, तूने क्या किया। तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं उन लोगों के जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, क्योंकि माता पिता को भी लगता है कि हाँ जीवन जीने के लिए भोग करने के लिए सब जरूरी है, तो बच्चा भी उसी तरफ इंक्लाइन होता है। और एक कारण है कि वातावरण अगर उग्र है सब कुछ है तो बच्चा उस तरफ इंक्लाइन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये भी है कि जो वातावरण है, वातावरण में विशेषकर और माता पिता की कृष्ण भावना के प्रति सीरियसनेस, ये दोनों पे बहुत डिपेंड करता है, और अगर उनको लगता है कि हाँ भक्ति जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जैसे आप कभी देखिए माता पिता आते हैं मंदिर, अभी नए नए कृष्ण भावनामृत में आए हैं, बच्चा भी नया है, तो पिताजी जब ऐसे प्रणाम कर रहे होते हैं बच्चा भी लेट जाता है, वो हाथ उठाते हैं माता पिता तो बच्चा भी हाथ उठा लेता है, तो ये संस्कार वहां से मिलना शुरू हो गया। अभी हमारे समाज के वातावरण में केवल ये दिखाया जा रहा है कि सक्सेस का मतलब है या अच्छे जीवन का मतलब है भोग विलासिता पैसा और अच्छा बड़ा घर। जिस दिन भक्तों ने यह सिखाना शुरू कर दिया कि बिना पैसे के या कम से कम पैसे में खुशहाल जीवन कैसे जिया जाता है, बिना टीवी के, बिना गैजेट्स के, बिना बड़े बड़े बंगलों के, या इन सब के अलावा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करते हुए कि किस प्रकार जिया जा सकता है खुशहाल रूप में, तो धीरे धीरे जब बड़ी संख्या में लोग ऐसा करना लगेंगे तो बच्चे भी उसी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे यहां पर बाहर पढ़ रहे हैं, इस समाज में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो गुरुकुल का जीवन हम देखते हैं वहां कितना सादा जीवन, बच्चों को धोती दी जाती है, चादर दी जाती है, खड़ाऊं दी जाती है, सुबह से लेकर शाम तक 2:30 बजे उठना, 7 बजे सोना, पूरे दिन वैदिक कार्यों में लगे रहना, तो उनका जीवन वैसे चल रहा है। और जब उनको पता चल जाता है कि जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए 2 वक्त का भोजन, सर पे छत और वो सब बेसिक नीड्स हैं, उसके अलावा फिर बाकी जीवन अपना कृष्ण भावना में लगा के बिना किसी टेंशन के निश्चिंत जीते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो जब तक दिखाएंगे नहीं वैसे जिएंगे नहीं तब तक लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ कारण है, ये सब कुछ कलेक्टिवली करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज एक व्यक्ति कर भी लेगा तो बाहर इन्फ्लुएंस रहेगा, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि कैसे करें क्या नहीं करें। तो ये है चीज, ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की।